नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है चार, मोक्षत्व, वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति, ये आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। मेरे अनुभव से इसके अतिरिक्त कम से कम 10-12 और गुण हैं जो होने चाहिए ज्ञान मार्ग में, एक ज्ञान के साधक में। तो अभी से आपको लग रहा होगा ये तो अभी से असंभव लगता है, और ये ऊपर से और 10 गुण बता रहा है कि होने चाहिए। तो मेरा जो अनुभव मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आपको आपका जो अनुभव रहेगा उसके हिसाब से आप निश्चय कर सकते हैं कि मार्ग आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई नहीं होता आपसे तो मत आना इस मार्ग, समय नष्ट होगा आपका, कोई और मार्ग देख लेना। जो बचे हुए गुण हैं वो विकसित किए जा सकते हैं, वो सीखे जा सकते हैं, वो पौधे की तरह, बीज की तरह होते हैं, जिनमें गुरु यदि पानी डाले, खाद डाले तो वो बढ़ते हैं। तो वो क्या है इसके अतिरिक्त, जो कि आपको शायद ही किसी किताब में मिले या शायद ही किसी और सत्संग में मिले, क्योंकि वो मेरा खुद का अनुभव है। जो अतिरिक्त गुण है ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान दीक्षा के लिए, वो है रुचि। आपकी रुचि होनी चाहिए इन बातों में, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। रुचि जो है वो विकसित कभी कभी नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे आपको उत्तर मिलने लगते हैं आपकी रुचि बढ़ती जाती है, आपका उत्साह बढ़ता जाता है, आपकी हिम्मत, तितिक्षा बढ़ती जाती है, क्योंकि उत्तर मिल रहे हैं। यदि बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो आप शुरू भी नहीं करेंगे। तो रुचि होना आवश्यक है, शुरू करने के लिए कम से कम आवश्यक है, बाद में आपकी बढ़ती जाएगी। दूसरा है जिज्ञासा, जो कि मैंने पहले बताया, जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञान की इच्छा। इससे ऊपर कोई आपकी इच्छा होगी तो आप वो करेंगे जो इससे बड़ी आपकी इच्छा है, हम ज्ञान के पीछे नहीं भागेंगे। तो सबसे बड़ी इच्छा आपकी ज्ञान की होनी चाहिए, यानी कि जिज्ञासा सबसे प्राथमिक होनी चाहिए, तो प्रगति बहुत तेज होती है, नहीं तो धीरे होगी या फिर नहीं होगी। तीसरा है बुद्धि, जिन लोगों की बुद्धि क्षीण है उनको ज्ञान मार्ग पर नहीं आना चाहिए, उनका समय नष्ट होगा, वो दूसरा कुछ कर लें, अपने भक्ति कर ले या फिर योग कर ले या फिर हठ योग क्रिया ये सब कर लें। यदि बुद्धि बराबर नहीं है, सीमित है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है बुद्धि भी बढ़ती है। अभी अज्ञान है इसलिए बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है आपको रुचि बस होनी चाहिए, बुद्धि अपने आप बढ़ती है। फिर यदि आप कहेंगे नहीं मैं बुद्धिमान नहीं हूँ तो फिर मैं ज्ञान मार्ग पर नहीं जाऊँगा, तो ये ठीक नहीं है। आप शुरू कीजिए, लेकिन एक निम्न मात्रा में बुद्धि आवश्यक है, नहीं तो आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तेज बुद्धि होना आवश्यक है, कम से कम उसकी संभावना होना आवश्यक है। चौथा है पूर्वाग्रह से आपको मुक्त होना चाहिए, पूर्वाग्रह मुक्त चित्त होना चाहिए। यदि आपके मन में बहुत सी बातें पहले से बैठी हैं और आपने मान लिया कि वो सत्य है, तो आप पूर्वाग्रही हैं, यानी कि पहले से जो आपको मालूम है वो आप कहते हैं कि बस यही मेरा ज्ञान है, इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं करना है, तो प्रगति नहीं हो सकती ज्ञान मार्ग पर। तो आप देखेंगे धार्मिक तरीके के लोग हैं जो बस अंधश्रद्धा में बैठे हुए हैं सब कुछ मान के, तो उनके सामने आप एक भी ज्ञान की एक भी बात रखेंगे तो वो आपको काटने के लिए दौड़ेंगे, वह आपके शत्रु बन जाएंगे, आपके संबंध खराब हो जाएंगे उनसे। तो ऐसे लोग पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। तो आपका जो प्याला है वो खाली होना चाहिए, वो भरा हुआ होगा तो फिर कुछ भी नहीं जाएगा। अगला है एक गुण होना चाहिए आप में, वो जो कि है आपको समालोचना करना आना चाहिए, समालोचनात्मक मानसिकता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि किसी भी बात को सही या गलत बिना सोचे समझे न माने। यदि आपने वो सही मान ली कोई बात बिना उसकी आलोचना किए, बिना उसमें गलतियां ढूंढे, तो वो अंधश्रद्धा हो गया। वो बड़ा आदमी कह रहा है, विवेकानंद का नाम है उसमें, तो सही होगा। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं कि सही होगा, भूल सबसे होती है। या फिर आपके लिए सही है या नहीं वो, क्योंकि शिक्षक की बात हमेशा सही नहीं होती, वो सिर्फ उपाय होता है साधक को किसी गड्ढे से निकालने के लिए, किसी अज्ञान से निकालने के लिए उपाय होता है, हमेशा सत्य नहीं होता। तो किसी शिक्षा में या किसी सत्य में जो लोग कह रहे हैं, गलतियां ढूंढना एक बड़ा गुण होता है, त्रुटियां ढूंढना किसी में, लेकिन यदि आप सिर्फ आलोचना करते हैं कि गलत है तो वो भी ठीक नहीं है। समालोचना, सम उस पे आगे लगा है, सम का मतलब कि वो कुछ उपयुक्त होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। अर्थहीन तरीके से आलोचना करना, ज्ञान मार्ग पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर ऐसे लोगों को। अगला, आपको तार्किक होना चाहिए। यदि कोई बात तार्किक नहीं लगती तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको अपनाना नहीं चाहिए और उसको सत्य बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तर्क जो है सत्य का मानदंड है। यदि वो बात तार्किक नहीं है, उस वक्त आपको नहीं लगती, तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों की तर्क शक्ति इतनी कमजोर होती है, उनको तर्क और वितर्क में कोई भेद नहीं पता होता, क्या चीज तार्किक है उनको नहीं पता होती या फिर कुछ उल्टा सीधा तर्क होता है उनका, सब लोग करते हैं तो मैं भी करूंगा, इस तरह के तर्क आपने देखे होंगे। तो यदि तर्क का गुण नहीं है तो बहुत कम ज्ञान होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद धैर्य और दृढ़ता, यानी कि धीरज आपको रखना पड़ता है। हर उत्तर आज के आज मिलेगा मेरे को ऐसा संभव नहीं है, कभी कभी वर्षों लग जाते हैं क्योंकि चित्त तैयार नहीं होता, वो पकता नहीं है, जब तक तब तक उसका अनुभव भी नहीं होता। तो धैर्य रखना पड़ता है ज्ञान मार्ग पर, हम इसको कहते हैं सीधा मार्ग, लेकिन फिर भी धैर्य रखना पड़ता है। दृढ़ता यानी कि आपको लगे रहना पड़ता है इसमें। यदि आपने छोड़ दिया कि ये तो ठीक नहीं है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो फिर आगे प्रगति नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसमें। उसके बाद ज्ञानी को प्रयोग का मार्ग लेना चाहिए, प्रयोगकर्ता होना चाहिए। शिक्षा जो आपको दी जा रही है उसको प्रयोग करके देखें कि वो सही है या नहीं। जैसे वैज्ञानिक, विज्ञान क्या है, ज्ञान मार्ग ही है एक तरह का, सिर्फ बहुत एक चीज़ों का ज्ञान मिलता है वहाँ पे आपको, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रयोग वहाँ पे सर्वोपरि है। जब तक प्रयोग सिद्ध नहीं करता कोई बात, तब तक वो सत्य नहीं होती विज्ञान के आधार पर। तो वैसा ही अध्यात्म में भी है। अध्यात्म में तो और ज़्यादा आवश्यक है कि आपको कोई शिक्षा दे रहा है, उसका कोई प्रयोग असफल होता है तो इसका मतलब सत्य नहीं है वो शिक्षा। इसके बाद एक आनंददायी कार्य होना चाहिए, दूसरों को ज्ञान बांटना। यदि सिर्फ लेना ही लेना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देना भी चाहिए, ज्ञान का दान करना चाहिए। आज आपने कुछ सीखा है, प्रयास करना चाहिए कि बाकी लोगों को भी आप सिखाएं। किसको सिखाना है किसको नहीं सिखाना, वो ज्ञान का अधिकारी कौन है, वो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये गुण रहता है अच्छे शिष्य का कि जैसे ही कुछ पता चला उसको तुरंत बांटने का प्रयास करता है। ज्ञानी को अविवादी होना चाहिए, यानी कि किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कोई अड़ा हुआ है कि नहीं मेरा सत्य सत्य है, आपने देख लिया वो होता ही है, सबका अपना अपना सत्य होता है, तो विवाद नहीं करना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि कोई चीज़ सत्य है तो वो एक बार कहने से सामने वाले को पता चल जानी चाहिए, अपने आप उसका ज्ञान हो जाना चाहिए सामने, क्योंकि अनुभव है। यदि आपने वो अनुभव दिखा दिया जो आपके सामने है तो वाद विवाद वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। यदि चलता रहता है विवाद, इसका मतलब वो समय नष्ट हो रहा है, या तो आप में कुछ कमी है आपके सत्य में, आपके ज्ञान में, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो चाहता नहीं है समझना, दोनों का समय नष्ट होता है इसमें। तो अविवादी होना चाहिए, इसमें तर्क वितर्क और वाद विवाद दूसरों से नहीं करना चाहिए, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बताना भी नहीं चाहिए। उसके बाद ज्ञानी को हमेशा ज्ञान ग्रहण करने की मुद्रा में होना चाहिए, यानी कि उत्सुक रहना चाहिए हमेशा, जहाँ नया ज्ञान मिले सब कुछ छोड़ के उसको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, हमेशा उसको उस मुद्रा में होना चाहिए, हाथ जोड़ के गुरु के सामने कि मुझे और जानना है, मुझे और उत्तर चाहिए। यदि आपका इस तरह की मानसिकता नहीं रहेगी तो फिर प्रगति धीरे होगी। समर्पण एक और गुण है, ज्ञान के लिए समर्पित होना चाहिए जीवन। यदि दूसरी चीज़ों में लगे हैं आप तो फिर बहुत धीरे चलता है ये, कितना भी सीधा मार्ग हो कितना भी तेज मार्ग हो, समर्पण नहीं है तो फिर वो बहुत धीरे हो जाता है। और समर्पण का बहुत गहरा अर्थ है यहाँ पे, समर्पण पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि अज्ञान का नाश करने की इच्छा ही समर्पण है, यानी कि मान लेना कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी भावना यदि है तो बहुत तेज गति से प्रगति होती है ज्ञान मार्ग पर। आपके सामने प्रश्न खड़े हो जाएंगे तरह तरह के, और जैसे ही प्रश्न आते हैं उनके उत्तर भी आ जाएंगे। अगला गुण है आलोचना को सहन करने की क्षमता। एक गुण है समालोचना करना, और ये दूसरा उसका विरुद्ध गुण है कि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसमें देखना कि क्यों यहाँ पे मेरी कहाँ गलती है, यहाँ पे मुझसे कहाँ भूल हुई है, ये पहले देखना। जो सामने वाला कह रहा है उसको कहने दो, ज़्यादातर आप गुरु होगा जो आपकी आलोचना करेगा लेकिन यदि कोई और भी करता है तो पहले अपने ज्ञान में ढूंढना उसका कारण कि हो सकता है मेरा यहाँ पे अज्ञान हो इसलिए कोई आलोचना कर रहा है मेरी। यदि नहीं तो भी उसको सहन कर लेने की क्षमता होनी चाहिए और अगली बार उस चक्र में नहीं पड़े आपको निश्चय करना चाहिए। तो ये क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जैसे ही आप किसी की आलोचना शुरू करेंगे वो उसको अपनी निंदा मान लेता है कि उसमें एक तरह की उपरति या समाधान अभी तक जागृत नहीं हुआ है। खाने बोलने सोने इस साधना में अतिवादी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग या फिर बहुत कम खाने वाले लोग दोनों के लिए ज्ञान मार्ग उपयुक्त नहीं है, कोई उपयोग नहीं है ज्ञान मार्ग का उनके लिए। खाने से, ज़्यादा खाने से आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, मूर्खता बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि खाने के बाद दिमाग काम करना कम बंद कर देता है, सारी ऊर्जा खाना पचाने आपके शरीर के रख रखाव में चली जाती है, और खाने में जो लगे हैं उनको ज़्यादा कमाना भी पड़ता है, और सिर्फ ये वो खा के नहीं चलता उनका काम, उनको तरह तरह की नई चीज़ें खाने का शौक़ होता है, तो आप देखेंगे उनका समय उसी में जाता है, खाने पीने में ही जाता है। तो ऐसे लोगों का कोई प्रगति नहीं होगी ज्ञान मार्ग पे। और बिल्कुल ना खाने वाले जो जिनका शरीर एकदम कमज़ोर दुबला पतला है, जब सीधा बैठ भी नहीं सकते, अपनी पीठ सीधी करके एक घंटे से ऊपर नहीं बैठ सकते, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है, तो रोगी हैं किस तरह के, बहुत कम खाने वाले, उनका भी ज्ञान मार्ग पे कोई भविष्य नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति और जितनी भूख लगे उतना खाने वाला व्यक्ति, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी और प्रगति तेज होगी। ज़्यादा सोने वाले आप देखेंगे उनकी भी बुद्धि इतनी नहीं चलती, सोने की इच्छा होती है हमेशा। यदि एक वाक्य भी गुरु बोलना शुरू करे तो आप देखेंगे उनको नींद आ जाती है वहीं के वहीं। इसका मतलब न रुचि है न बुद्धि है, ना उनके लिए वो बात उपयोगी है। ऐसे ज़्यादा सोने वाले लोगों के लिए, सुस्त लोगों के लिए नहीं है ज्ञान मार्ग। जो कम सोते हैं हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, भले ही उनका उनकी नौकरी हो या उनका परिवार हो या उनका शौक हो, जो भी हो, ऐसे लोग सो नहीं पाते। और यदि नींद पूरी नहीं होती तो आप देखेंगे बुद्धि आपकी कम हो जाती है, मनन सोचने के लिए आपके पास शक्ति नहीं बचती यदि आप कम सोते हैं। तो बराबर सोना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना, ये आवश्यक है ज्ञानी के लिए। और साधना, यदि आपको कोई साधना दी गई है, गुरु ने दी है, तो अति नहीं करनी चाहिए उसमें। गुरु ने कहा है कि 20 मिनट करना, तो आपको 20 घंटे नहीं करने चाहिए। कुछ लोग बहुत ये होते हैं, उनका उत्साह बहुत होता है, शक्तिहीन हो जाएंगे आप, धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और कोई ज्ञान नहीं होगा। या फिर बिल्कुल भी एकदम ढील दे देना उसमें कि कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, जो भी गुरु ने दिया है। तो ऐसे लोग भी, उनकी भी कोई प्रगति नहीं होती ज्ञान मार्ग पे। जैसे ही आपको कुछ साधना करनी हो, करके छुट्टी। उस साधना अगर जीवन भर चल रही है एक ही तरह की साधना, तो उसमें भी समस्या है, और इसका मतलब आपकी प्रगति नहीं हो रही है। साधना जीवन भर नहीं चलनी चाहिए। ज्ञानी को अति सूक्ष्मवादी होना चाहिए, यानी कि कम बोलना, मतलब उचित मात्रा में खाना, उचित मात्रा में सोना, जितना आवश्यक है उतना ही करना, जितना आवश्यक है उतना ही पैसा कमाना, जितना आवश्यक है उतने ही मित्र या रिश्तेदार संबंधी, जितना आवश्यक है उतना ही काम करना, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। तो ये होता है अति सूक्ष्मवाद, ये एक तरह की जीवन शैली है। यदि कोई वस्तु आवश्यक नहीं है तो वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपको वो करना भी नहीं है, उसके पीछे भी नहीं भागना है। तो इससे क्या होता है कि बहुत समय मिलता है और मन शांत रहता है, तो आपके उत्तर जल्दी आते हैं। फिर अंतिम जो मेरे हिसाब से है वो है गुरु भाविता, यानी कि जो अभी जो शिष्य है वो आगे जाके शिक्षक बनेगा। सभी नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे, लेकिन यदि वो गुण है आप में कि आप गुरु बन सकते हैं, तो वो शिष्य भी आप अच्छे होंगे। वो शिष्य जिसमें गुरु के लक्षण दिखने लगते हैं वो बहुत तेज गति से प्रगति करता है। आपने देखा ही होगा, तो आपके स्कूल में, शाला में या दूसरी जगह, कुछ जो लोग शिक्षक को भी सिखा देते हैं शिक्षक से पहले पढ़ के आ जाते हैं वो किताब में, और शिक्षक की बातों में गलतियां निकालते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है, वो पहला जो बच्चा होता है जो बताता है कि ये सर आपने गलत लिखा है, बहुत विद्वान बनता है, बहुत तेज होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। तो ये है गुरु भाविता का गुण, यानी कि आगे जाके आप में गुरु बनने की संभावना है, तो तेज प्रगति होगी। तो उसके लिए गुरु की नकल करना आवश्यक है कि जैसे गुरु है वैसे बनने की कोशिश करना, बनने का प्रयास करना। ये बड़ा विषय है, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको इतना ही बता दिया कि मेरे हिसाब से ये सारे गुण भी चार गुण हैं, उसके ऊपर उसके अतिरिक्त हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छी बात यह है कि यदि आपको लगता है कि ये इसमें से इतने 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 सारे गुण हैं, इसमें से तो एक भी नहीं है मेरे पास, ये बहुत कम है मेरे पास, तो ये चीज़ें जो है, ये गुण जो है विकसित किए जा सकते हैं, उसमें से कुछ नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन शुरू यदि आप इससे शुरू करेंगे, इन गुणों से, तो बहुत आसान है, फिर ज्ञान मार्ग आपके लिए है। यदि आपको लगता है कि ये इतना कठिन है इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो अभी से बहुत कठिन लगता है, तो आप इस ओर देखिए भी मत, किसी काम का नहीं है आपके। अभी जब आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप या तो पुस्तक खोलते हैं या फिर गुरु के पास जाते हैं, तो कैसे पता करें कि जिसने जो गुरु ने कहा है वो सत्य है या नहीं। वो हमने पिछली बार उसकी चर्चा की थी कि आपके सत्य के मानदंड होने चाहिए, लेकिन जो शुरू करता है ज्ञान मार्ग, उसके पास इतना भी ज्ञान नहीं होता कि मानदंड क्या रखूं, कौन सा गुरु सही है कौन सा नहीं है, तो आपको आपके पास कोई उपाय नहीं बचता सिवाय इसके कि आप एक किसी गुरु को पकड़ लें, वहाँ से शुरू करें। गुरु कैसा होना चाहिए बहुत बड़ा विषय है, सही गुरु कौन है मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा विषय है, तो उसके बारे में हम विस्तार में जाएंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको बहुत इसको सार बता देता हूँ कि आपको गुरु से ही शुरू करना पड़ेगा। यदि आप नए हैं तो कम से कम एक गुरु तो आपका होना ही चाहिए, और ये आवश्यक नहीं कि आपको गुरु के सामने बैठना मिलना ही पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। आप किताबों से या फिर सिर्फ सुनकर गुरु को भी आप सीख सकते हैं, एक बार थोड़ा बहुत सीख गए तो फिर ज्ञान मार्ग में ये अच्छी बात है कि आपको गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ आपके ऊपर होता है ज़्यादातर, तो गुरु थोड़ी बहुत सहायता कर देता है, लेकिन शुरू करने के लिए गुरु ही आपको चाहिए रहेगा। यदि वो पुस्तक के रूप में है या कुछ और के रूप में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे मेरे पास प्रश्न है तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, धीरे 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 ये आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो शुरू में आपको किसी अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए, और अच्छे गुरु का क्या मतलब है, गुरु के भी कुछ लक्षण होते हैं। पहली बात तो ये है कि शिष्य के लिए गुरु का मूल्यांकन करना असंभव नहीं है, क्योंकि वो गुरु है यदि आपने मूल्यांकन कर लिया गुरु का, तो फिर आप गुरु हैं, आप गुरु से बड़े हो गए, इसका मतलब वो गुरु नहीं हो सकता। लेकिन आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं गुरु कौन मेरे लिए गुरु सही होगा, तो गुरु के कुछ लक्षण मैं आपको देता हूँ, हो सकता है कि वो सही नहीं हो, लेकिन आपको प्रयोग करना है, ये बात आपको खुद ढूंढना है गुरु। तो पहला तो लक्षण होता है गुरु का अनुभव, वो पुस्तकें खोल के नहीं बताता आपको कि हाँ इस पुस्तक में ये लिखा है और इस आदमी ने ये कहा है, इस महान व्यक्ति ने वो कहा है, ये शिक्षक हो गया, ये आपके स्कूल के शिक्षक के बराबर हो गया, जो अपने अनुभव से कहता है कि हाँ ये मेरा अनुभव है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ये ज्ञान मिलेगा, वो सही गुरु है। तो आप किसी भी गुरु के पास जाए, यदि वो आपको दो चार बातें किताबों से बता भी देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो अपने अनुभव से आना चाहिए, उसे खुद के अनुभव से आना चाहिए गुरु के। यदि ऐसा नहीं होता है, आपके एक दो साल निकल गए हैं गुरु के पास, लेकिन आपने कभी देखा नहीं कि गुरु का भी कुछ अनुभव हुआ है, तो वो सही गुरु नहीं है आपका। वो आपको शास्त्रों की शिक्षा दे सकता है, किसने क्या कहा है वो आपको बता सकता है। इसके बाद अगला गुरु का लक्षण है कि प्रभावी वक्ता होना चाहिए, यानी कि वो जो कह रहा है वो बाकी लोगों की समझ में आना चाहिए। यदि बाकी लोग सो जाते हैं या उनकी कोई रुचि जागृत नहीं होती वो जो कहता है, भले ही उसको अनुभव हो भले ही ज्ञान हो, लेकिन संचार नहीं हो रहा है ज्ञान का, उसको नहीं आता ज्ञान देना, तो आप देखेंगे जो नया नया शुरू करते हैं वो ऐसे होते हैं, मालूम नहीं होता कैसे सिखाना है। कुछ लोगों की वाणी बहुत तेज होती है, अच्छी होती है, उनमें ये योग्यता होती है अपना अनुभव दूसरों को बताने की या सिखाने की, तो वो एक अच्छा गुरु होता है। इसके बाद धैर्य, गुरु में धैर्य होना चाहिए। यदि एक शिष्य बार 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 वही प्रश्न करता है कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, या आप गलत हैं, ये ठीक नहीं आपने बताया मुझे, या आपने कभी मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो गुरु को धैर्य रखना पड़ता है ऐसे ऐसे शिष्यों के लिए, या जो शिष्य जो है उनकी प्रगति बहुत धीरे धीरे हो रही है, वो 15 साल हो गए, वो उनको एक भी बात का ज्ञान नहीं हुआ, एक भी अनुभव नहीं हुआ। तो गुरु में एक लक्षण होता है कि उसमें धैर्य होता है कि वो प्रयास करता रहता है। यदि कोई गुरु आपको कहता है 5 मिनट सिखाने के बाद कि तुम किसी काम के नहीं हो, अभी यहाँ मत आना, तो वो गुरु नहीं है, वो आपके लिए उपयोगी गुरु नहीं है, धैर्य नहीं है क्योंकि गुरु में। तो शिष्य में तो धैर्य होना ही चाहिए, गुरु में और होना चाहिए, 10 गुना धैर्य होना चाहिए। इसके बाद कुशलता है, गुरु में एक लक्षण होता है कि वो कुशल होते हैं अपना ज्ञान दूसरों में बांटने के लिए, उनके पास तरह तरह के उपाय होते हैं, क्योंकि आप अंत में देखेंगे तो ज्ञान तो कुछ होता होगा नहीं, आपके आपके सब प्रश्न गायब हो जाएंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। तो उस जो भी उत्तर गुरु देता है वो उसकी कुशलता होती है कि प्रश्न को कैसे नष्ट करें। तो ये बड़ा विषय है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो यदि गुरु के पास ये गुण नहीं है, कुशल नहीं है वो प्रश्न के उत्तर देने में, तो आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके और 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं यदि उसके उत्तर से, तो सही गुरु नहीं है। तो भी थोड़ा समय देना चाहिए कि ऐसे गुरुओं को भी, हो सकता है आप में कुछ इधर समस्या हो, कोई बाधा हो। इसके बाद समय, यदि गुरु आपको समय नहीं दे पा रहा है, तरह तरह की चीज़ों में जो है व्यस्त हैं, 10,000 उसके शिष्य हैं और उसके पास तक पहुंचने में आपको जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, सालों बैठना पड़ता है कब आपका नंबर आएगा तो वो गुरु आपके लिए सही नहीं है। गुरु के पास आपके लिए समय होना चाहिए, 10-12 से ज़्यादा शिष्य नहीं होने चाहिए। आप जितना समय चाहे आप गुरु के साथ बिता पाए, वो आप सुविधा आपको वो मिलनी चाहिए। यदि गुरु के पास समय नहीं है आपके लिए, आपको वो 2 बातें बताता है फिर बोलता है अगले साल आना, मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ, मैं तो दूसरे देश जा रहा हूँ, और मैं मुझे तो ये चुनाव लड़ना है, या मुझे बड़ा आश्रम बनाना है उसके लिए पैसा मैं इकट्ठा करने जा रहा हूँ, या फिर इतने उसके चेले हैं कि वो आपको पहुँचने भी नहीं देते, वो मैनेजर और डिप्टी मैनेजर और ऐसे ऐसे मैनेजर बिठा रखे हैं उसने अपने नीचे, तो वो गुरु आपके किसी काम का नहीं है, आपका समय नष्ट होगा वो। अब ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि उसको कितना अनुभव है, कितना बड़ा गुरु है, आपके किसी काम नहीं आएगा, आपका समय नष्ट होगा। तो जिस गुरु के पास समय नहीं है आपके लिए, बैठ के बात नहीं कर सकता वो एक दो घंटे भी, वो ठीक है, आपको जितना सीखना है सीख लीजिए, नहीं तो दूसरा गुरु ढूंढ लीजिए। उसके बाद गुरु को निस्वार्थ होना चाहिए, यदि आपसे कुछ चाहता है ज्ञान के बदले में तो वो गुरु नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो किसी तरह का व्यापारी है, व्यापार कर रहा है कि मैं आपको ये बताऊंगा 20,000 रुपये लगेंगे वो गुरु नहीं है। निस्वार्थ होना चाहिए गुरु को, अपने स्वार्थ के लिए जो ज्ञान देता है वो शिक्षक है, या आपके स्कूल का जो टीचर है, नौकरी कर रहा है वो शिक्षक की। तो गुरु के लक्षण बहुत बड़ा लक्षण है कि उसको स्वार्थहीन होता है, वो कोई स्वार्थ नहीं होता गुरु का। और यदि कभी कभी वो पैसे मांग भी ले कि मुझे ये इतने पैसे दो, दक्षिणा दो, वो दो, यदि छोटे मोटा रकम है वो, तो ये गुरु बहुत बूढ़ा है, उसकी कोई कमाई का साधन नहीं है, अकेला है, कोई ध्यान नहीं रखता है, ऐसे सन्यासी तरह का है, तो आप दे भी सकते हैं थोड़ी सी दक्षिणा। लेकिन यदि वो कहता है कि हाँ मेरा 5-स्टार आश्रम है, वहाँ पे 25,000 रुपये लगेंगे, 1 हफ्ते का कोर्स है, तो आप ध्यान रखिए व्यापार है, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें पता चलें, लेकिन वो तो आप पुस्तकों से भी पता कर सकते हैं। उस गुरु के पास जिसके पास अनुभव नहीं है, वो ही ज़्यादातर व्यापार में लगे रहते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। कभी कभी कुछ अच्छा मिल भी जाता है, आप शुरुआत कर रहे हैं ज्ञान मार्ग पर, ज़्यादा आपके पास मार्ग नहीं होते हैं, ज़्यादा उपाय नहीं होते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार जीवन भर आप यही करते आ रहे हैं, अपना गाड़ी कमाए गुरुओं पर उड़ा रहे हैं, तो फिर कोई प्रगति नहीं हो रही आपके, इसका मतलब। इसके बाद गुरु उत्तरदायी होना चाहिए शिष्य के लिए, यानी कि जैसे आपके माता पिता हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होने देते और आपको सुरक्षित रखते हैं, वैसा गुरु होना चाहिए। गुरु माता और पिता के भी ऊपर होना चाहिए। यदि गुरु कोई आपको साधना देता है, कोई तरीका सिखाता है, गुरु उत्तरदायी होता है उसके लिए। यदि शिष्य को कुछ बाधा आती है, कुछ नुकसान होता है, तो गुरु उत्तरदायी होता है। यदि वो आपको सिर्फ बता के भाग जाए कि तुम खुद उत्तरदायी हो इसके, मैंने तो आप बता दिया तुमको ये मंत्र, इससे जो भी होगा वो तुम खुद जानो, मेरे पास मत आना कुछ गड़बड़ हो गई तो वो गुरु नहीं है, बता के चला गया आपको। ये भी वो उसमें उत्तरदायित्व नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ बता रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता गुरु, तो आपके लिए सही गुरु नहीं है। भले ही उसको बहुत ज्ञान हो, बहुत अनुभव हो, बहुत बड़ा स्वामी हो, लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपके साथ आपका साथ नहीं देना चाहता, तो आपके लिए वो अर्थहीन है। तो ये गुरु के कुछ लक्षण हैं, वो आपको आपके अनुभव से आएंगे। थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, पहले जाके थोड़ा सा देखना चाहिए, कुछ महीने कुछ साल बिताने चाहिए तरह तरह के गुरुओं के साथ, और जहाँ पे आपकी प्रगति सबसे अधिक हो वहाँ पे आपको टिकना चाहिए। आप देखेंगे इसमें कुछ और मैंने लक्षण नहीं बताए कि सन्यासी होना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए, या सर मुंडा हुआ होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, या सिर्फ लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े, या बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, या ऐसा वैसा, ये सब लक्षण नहीं है गुरु के। ये सब मूर्खता है, ये सब बेवकूफ़ी है। उस गुरु का यदि भूतकाल है जिसमें कि उसने कुछ उल्टी सीधे चीज़ें की हैं, लोगों ने ढूंढ ढांड के निकाल ली है, तो वो भी कुछ मायने नहीं रखता, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो गुरु भी मनुष्य है, उससे भी गलतियां होती है। तो मैंने वो चीज़ें जो है गुरु के लक्षणों में नहीं डाली हैं। ये जो मैंने बताए हैं, यदि वो लक्षण आपको मिलते हैं तो वो आपका गुरु है। इस बारे में हम बाद में और विस्तार से बात करेंगे। मैं गुरु के लिए पूरा आपको एक डेढ़ घंटा में इस पर आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न आता है, व्यक्ति गुरु की तलाश शुरू कर देता है। ये जो है आप खुद अपना विवेक इस्तेमाल करना है, विवेक का प्रयोग करना है, और देखना है कि आपके लिए कौन सा गुरु सही होगा। अब लोग काफ़ी पूछते हैं कि मुझे आप क्यों नहीं बताते किस गुरु के पास जाऊँ। तो मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन यदि वो आपके लिए सही नहीं है वो गुरु, तो फिर उसकी जवाबदारी मेरे पर आ जाती है, उसका उत्तरदायित्व मेरा हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हाँ, ये तीन चार नाम है, ये लिस्ट है गुरुओं की, देख लो, प्रयोग करके देख लो कौन अच्छा है। तो क्योंकि सबका गुरु सबको खुद ही ढूंढना पड़ता है, ये अंतिम वाक्य है इस बात गुरु की बात का। ज्ञान मार्ग की साधना बहुत सरल है, यानी कि इसमें कुछ बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है। भले ही इतने गुण हो और इतना आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन साधना जो है वो बड़ी सरल है। और साधना में सिर्फ तीन चीज़ें आपको करनी होती है, जो कि आपको मालूम ही होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये ज्ञान मार्ग का तरीका है। तो यदि मालूम नहीं है तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, इन चीज़ों को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हम आगे जाके सिर्फ यही करने वाले हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ तो ज्ञान मार्ग की दीक्षा थी, इसलिए मैंने इतना दूसरी चीज़ आपको बताई। ये प्रायोगिक चीज़ें हैं, ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसलिए मैं बताई। नहीं तो जो ज्ञान मार्ग पर है वो आपको सिर्फ तीन बातें करनी है, तीन कार्य हैं आपके, वो श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना या फिर पढ़ना, पढ़ना भी श्रवण में ही आ जाता है, या कुछ देखना, वीडियो वगैरह, ऑडियो सुनना, या फिर सामने बैठ के सुनना। जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं, ये श्रवण हो गया। यदि किसी की सुनने की भी इच्छा नहीं है तो फिर बहुत कठिन है, उसको ज्ञान क्या मिलेगा फिर, वो सुनना भी नहीं चाहता। तो ज्ञान मार्ग की साधना तीन चरणों में होती है। पहला तो आपको सुनना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए मनन यानी उस पर विचार करना, उसको देखना कि तार्किक है या नहीं, उसकी समालोचना करना, उसकी उसमें गलतियाँ ढूंढना, आपके अनुभव से उसको तोलना, ये सब मनन है। तार्किक नहीं है तो दूसरे प्रश्न उठते होंगे आपके, या आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन एक तीसरा प्रश्न उठ गया आपके मन में कि ये तो ठीक है लेकिन अब क्या है। तो ये है मनन, यानी कि सिर्फ सुन के काम नहीं चलता। आप सुनेंगे तो उसमें 90% अगले दिन ही भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब तक मनन नहीं करेंगे वो आपके मन में नहीं बैठेगा, ये है मनन की क्रिया। तो अभी तो मैं आपको बहुत सारांश में बता रहा हूँ, यही हम करने वाले हैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक यही करने वाले हैं, तो आपको अच्छा एक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा अनुमान हो जाएगा कि ये क्या होती है। उसके बारे में विचार करना जो कहा गया है, ये है मनन। और उसके बाद है निधिध्यासन। तो ये कठिन शब्द है, इसका अर्थ होता है कि हमेशा इन्हीं विचारों में लगे रहना कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर है, या इस ज्ञान का क्या अर्थ है, उसका प्रयोग करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसका उपयोग करना, मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान पर चलना। कि वाणी भी ज्ञान से आनी चाहिए, फिर एक बार ज्ञान हो गया तो आपके जो कर्म है वो ज्ञान से होने चाहिए और आपके जो विचार है वो भी ज्ञान से भरे होने चाहिए, उस ज्ञान से जो आपको मिल गया है श्रवण और मनन के बाद या अनुभव के बाद। तो निधि ध्यासन में आप देखेंगे नित्य है, नित्य विसंधि करेंगे तो इसकी नित्य अध्यासन, नित्य मतलब हमेशा बुद्धि है उसी में लगी होनी चाहिए, हमेशा ज्ञान में ही डूबे निरंतर आपको रहना है, उसे निकलना है, उसको भूलना नहीं है। हाँ ये बता दिया, मुझे समझ में भी आ गया, अब चलो मैं वो करता हूँ जो पहले से करता आ रहा हूँ, तो उसका कोई उपयोग नहीं है, इसका मतलब आपकी कोई प्रगति नहीं हो रही है। यदि आप उसमें लिप्त हो जाएंगे ज्ञान में तो वो निधि ध्यासन है। तो शास्त्रों ने तीन चरण बताए हैं इसमें ज्ञान मार्ग पे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हैं, लेकिन और भी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि ज्ञान मार्ग के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, और भी जो है उसके चरण होते हैं ज्ञान मार्ग पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रवण से पहले प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न के पहले कोई कारण होना चाहिए प्रश्न का, तो ये चीज़ें जो है वो शास्त्रों में से निकाल दी है उन्होंने। और निधि ध्यासन के बाद ज्ञान का प्रयोग या ज्ञान के जो प्रभाव होते हैं चित्त पर, चित्त कैसे बदलता है और उसके सुप्रभाव कुप्रभाव जो भी प्रभाव है वो कैसे होते हैं, वो भी होता है ज्ञान के बाद भी होता है ज्ञान मार्ग में। तो ये चीज़ें जो है आपको पुस्तकों में नहीं मिलती, ये चीज़ें आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ अनुभव से आता है। तो जिसका अनुभव हुआ है वो आपको बताएगा, नहीं तो आपको औपचारिक रूप से सिर्फ आपको तीन ही बताए जाएंगे कि ये तीन इसके चरण हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन, इससे ज्ञान आपको मिलता है। निधि ध्यासन का प्रभाव ये होता है कि मन शांत हो जाता है, भले ही आपको उत्तर मिले या नहीं मिले, सत्य असत्य उसे कुछ अर्थ नहीं है। यदि मन में शांति है, सुख है, तो आपको ज्ञान है, आपको अनुभव हो गया है। यदि आपका मन अशांत हो जाए, वो उत्तर सुन के आपके मन में प्रश्नों की झड़ी लग जाए कि ये ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये तो तार्किक नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी लगता है, इसका मतलब बहुत आसान है, इसका मतलब ये कि वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, आपकी मन मानसिक शांति चली गई है उसकी वजह से, या फिर वो किसी काम नहीं आ रहा है आपका, या अब उसका मन पर जो है उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है उसका, समझ लीजिए कि वो आपको अज्ञान की ओर ले जा रहा है, वो ज्ञान नहीं है। ये क्या होता है ज्ञान मिलता है तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है, आपको कुछ अतिरिक्त नहीं मिलता कभी ज्ञान में, ज्ञान मार्ग पे। यदि उसमें से आपको उसके बाद भी प्रश्न बचते हैं तो फिर हमारी सत्संग है। सत्संग का अर्थ ये होता है कि सत्य के साथ बैठना। ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, जरूर सत्संग से ही मिले, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आप देखिए जो ज्ञान मार्ग के साथ में चरण, उसमें सत्संग नहीं आता, उसमें श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं है, कहीं सत्संग नहीं लिखा है, कहीं गुरु या पुस्तक नहीं लिखा है। तो ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इन चरणों में आता है, किसी भी माध्यम से आ सकता है। सत्संग का अर्थ ये है कि कुछ प्रश्न उत्तर के उत्तर मिल जाए आपको, तो उसका उपयोग है सत्संग का। यदि मैं किताब खोल के आपको बताऊँ कि ये लिखा है इस किताब में, तो वो सत्संग नहीं है, वो समय नष्ट है, वो मूर्खता है, वो बेवकूफ़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, यदि आपको समय मिलता है तो खाली समय में। बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, बहुत सरल हिंदी में या इंग्लिश में लिखी गई है, संस्कृत जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने पूरा जितने भी बताए हैं लक्षण या जो भी ज़रूरी है ज्ञान मार्ग के लिए, कहीं पे भी संस्कृत शब्द नहीं आया है। तो यदि आपको संस्कृत आती है, आपकी रुचि है, तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत समय बचेगा। संस्कृत के जो शब्द है वो ज्ञान से भरे हैं, शब्द में ही ज्ञान होता है, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता उसकी व्याख्या जानने के लिए, यदि आपको संस्कृत आ गई तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत से बड़े बड़े अच्छे शिक्षकों ने, गुरुओं ने उसका अनुवाद कर रखा है आज की भाषाओं में, बहुत आसान है। लेकिन आप देखेंगे किताब पढ़ने भर मात्र से आपको कुछ ज्ञान ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है मिल जाए, और आखिर में तो आपका अनुभव ही आपका उत्तर रहेगा। लेकिन अनुभव कैसे मिले, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि उनको लिखना शुरू करें, एक डायरी बना लें, उसमें प्रश्न लिखना शुरू करें, और आपके हिसाब से अभी उत्तर क्या है आपके अनुभव के हिसाब से वो भी लिख दें, तो बहुत आसान हो जाता है। और सिर्फ उत्तर लिख के मान लेना ठीक नहीं है, उसकी चर्चा करें आपके गुरु के पास जाके, कहीं भी जाके, आपके मित्र होंगे या साधक होंगे, दूसरे मित्र हैं जो अध्यात्म में नहीं है, ज्ञान मार्ग पर नहीं है, किसी भी मार्ग पर नहीं है, उनसे चर्चा करना समय नष्ट करना है, तो अच्छे मित्र बना लें। जीवन शैली का अर्थ यही होता है कि सब कुछ ज्ञान के लिए होता है, आपके मित्र भी, आपके संबंधी भी, आपके आपका काम भी जो है इसी संबंधित होना चाहिए, तो बहुत अच्छी प्रगति होती है। आपको मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन सुख मिलता है इसमें, आनंद मिलता है, क्योंकि प्रश्न आपके शांत हो जाते हैं, प्रश्न शांत होते हैं तो ज्ञान से जो है शुद्धि होती है मन की, चित्त बदलने लगता है, शुद्ध होने लगता है, और आपके विचार, वाणी और कर्म धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं।
आप सुन रहे थे बोधिवार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।